आन्या ने अन्वय के हाथ को हटाने की कोशिश की ताकि उसे दूर जा सके, पर अन्वय ने अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया। आन्या एक बार फिर घबराई हुई पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगी। अन्वय ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, ओहो, तो तुम्हें जलन नहीं हुई थी ये देखकर कि वो लड़कियां मुझे कैसे देख रही थीं? आन्या ने झट से इनकार में सिर हिला दिया, क्योंकि उसकी घबराहट से शब्द उसके गले से नहीं निकल रहे थे। अन्वय ने उसके चेहरे के भाव देखे और लबों पर तिरछी मुस्कान फैलाते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें जलन होनी भी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल, हम बस रूममेट हैं। तुम्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन मुझे देख रही है और मैं किसके साथ हूँ। ये मेरा पर्सनल मैटर है और हम दोनों ने पहले ही तय किया था कि एक दूसरे के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो अब मैं जो चाहे करूं तुम्हें उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना कहकर उसने आन्या को छोड़ दिया और लबों पर तिरछी मुस्कान लिए वापस बालकनी की तरफ बढ़ गया। आन्या कुछ पल उसकी बातों को सुनकर वहीं खड़ी स्तब्ध सी रही। फिर जैसे ही आन्या ने बालकनी का दरवाज़ा खोला, आन्या की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची, मतलब तुम उन लड़कियों को देखोगे? बिल्कुल, देखने में हर्ज ही क्या है, अन्वय ने दरवाज़ा खोलते हुए ही जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आन्या ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया और उसे घूरते हुए बोली, कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रहे तुम उन लड़कियों में? उनमें नहीं तो तुम में लूँ दिलचस्पी, यही चाहती हो तुम? अन्वय एक बार फिर उसकी ओर मुड़कर उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। आन्या इस बार नहीं घबराई और बिगड़ते हुए बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मरो जिसके साथ जाकर मरना है, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे मर्जी बर्बाद करो उसे, मुझे इससे क्या? मैं तो बस कह रही थी उसमें कुछ खास नहीं है, वो तुम्हारे टक्कर की है ही नहीं। कहाँ तुम इतने हैंडसम और कहाँ वो छिपकली जैसी शक्ल की लड़कियाँ, कोई मेल ही नहीं तुम्हारा उनके साथ। तुम्हें तो कोई सुंदर सी लड़की मिलनी चाहिए जो सबसे अलग, सबसे जुदा हो और जो हर मामले में तुम्हारे टक्कर की हो। और ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? आन्या के चुप होते ही अन्वय ने एक बार फिर उससे सवाल किया। उसके सवाल को सुनते ही आन्या ने झट से कहा, कहाँ? यही मिलेगी, मुझे देखो, मैं हर मामले में तुम्हारे टक्कर की हूँ। रियली, तुम कहना चाहती हो कि तुम वो लड़की हो जो मेरे लिए बनी है? अन्वय के सवाल सुनकर आन्या हड़बड़ा गई और नज़रें घुमाते हुए बोली, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा मतलब बस इतना है कि जैसे मैं हर मामले में तुम्हारे टक्कर की हूँ, तुम्हें ऐसी ही कोई लड़की मिलनी चाहिए, मेरी जैसी सुंदर, बातूनी लड़की जो तुम्हारी खामोशियों को शब्द दे सके। तुम्हारी जैसी या तुम? अन्वय ने उसके चेहरे पर नज़रें टिकाते हुए सवाल किया, जिसे सुनकर आन्या ने अब तुनकते हुए कहा, मैं नहीं बात करती तुमसे, तुम बार बार मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए बाथरूम में जा घुसी। एक बार पलटकर गुस्से से अन्वय को देखा और जोर से दरवाज़ा उसके मुंह पर दे मारा। अभी तक अन्वय एकदम गंभीर बना हुआ था। आन्या के अंदर घुसते ही एकाएक उसके लबों पर कातिल मुस्कान फैल गई और वो खुद से ही बोला, जेलसी? वैसे जेलस होते हुए और भी हसीन लगती हो तुम। वो अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बाहर बालकनी में चला गया और पलक झपकते ही चमगादड़ बनकर वहां से उड़ गया। उसने उन दोनों लड़कियों के माथे पर अंगूठा रखकर कुछ किया और वापस उड़कर अपनी बालकनी में आ गया। जैसे ही वो वापस अपने इंसानी रूप में आया, उसके पीछे से आन्या की आवाज़ आई, तो तुम फिर से यहाँ आ गए? पीछे से आन्या की आवाज़ सुनकर अन्वय पहले तो घबरा गया कि कहीं आन्या ने उसको रूप बदलते हुए तो नहीं देख लिया। फिर उसके सवाल को सुनकर वो समझ गया कि आन्या ने कुछ नहीं देखा, तो चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए वो पीछे पलटा और रेलिंग पर रखी अपनी शर्ट उठाते हुए बोला, ये लेने आया था मैं। हूँ, झूठे कहीं के, जैसे मुझे नहीं पता यहाँ क्यों आए हो, आन्या ने मुंह टेढ़ा करते हुए उसे देखकर कहा। इस बार अन्वय एकदम गंभीर निगाहों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग में जो शक का कीड़ा घुस गया है ना, उसे निकाल दो। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज करने आता हूँ। किसी लड़की को अपनी बॉडी दिखाकर इम्प्रेस करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर होता तो उन्हें छोड़कर तुम पर ट्राई मारता, क्योंकि तुम हर मामले में उनसे बेहतर हो। पर मैंने ना ऐसा कुछ किया है, ना ही ऐसा कुछ करने का मेरा कोई इरादा है। मुझे उनमें तो क्या, दुनिया की किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उसको देखकर बोला, तुम में भी नहीं, इसलिए आगे से ऐसी बकवास करके मेरा दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात, अगर तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट है तो उसे यहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि मुझे तुम में भी कोई दिलचस्पी नहीं है और हम हमेशा साथ भी नहीं रह सकते। बस कुछ वक्त, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब की बात और थी, तुम्हें ज़रूरत थी मेरी, पर अब तुम सेटल हो तो हमें साथ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस महीने साथ रह लो, मैं अपने लिए अलग रूम देख रहा हूँ, अगले महीने से शिफ्ट हो जाऊँगा। इतना कहकर वो वापस कमरे में चला गया। आन्या हैरान परेशान सी वहीं खड़ी रह गई। पहले तो वो खुश थी कि अन्वय को उन लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर जब उसने कहा कि उसे उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आन्या के दिल में एक टीस सी उठी। पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और अन्वय के पीछे पीछे अंदर जाते हुए बोली, क्यों, क्या तुम स्ट्रेट नहीं हो जो तुम्हें लड़की में इंटरेस्ट नहीं है? क्या लड़के में दिलचस्पी है तुम्हें? उसकी बात सुनकर पहले तो अन्वय हैरान हो गया, फिर उसकी तरफ पलटते हुए गुस्से से बोला, नहीं, मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी है ना ही लड़कों में, तो अपने घटिया दिमाग को चलाना बंद करो। अगर तुम नॉर्मल हो तो तुम्हें मुझ में दिलचस्पी क्यों नहीं है? क्या मुझ में कोई कमी है? तुम्हें मुझसे भी अच्छी और ज्यादा सुंदर लड़की की तलाश है? मुझे किसी लड़की की तलाश नहीं है, मैं अकेले ही बहुत खुश हूँ। अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अरे पर तुम्हें कैसे पता? तो किसी लड़की के तुम्हारी जिंदगी में आने से तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी? हो सकता है उसके आने से तुम्हारी जिंदगी और इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बन जाए। एक बार ट्राई तो करके देखो। तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक्स, पर मुझे अपनी जिंदगी के साथ ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करने का कोई शौक नहीं है। क्यों, क्या तुम आम लड़के नहीं, आसमान से उतरे फरिश्ते हो जो सारी जिंदगी अकेले काटना चाहते हो? किसी लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते? आन्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। अन्वय उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराया, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं ना तो फरिश्ता हूँ ना ही इंसान, मैं एक वैम्पायर हूँ, इसीलिए मुझे इंसानी शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं। आन्या की आंखों के सामने वही जंगल वाले वैम्पायर की नीली आंखें घूम गई। पहले तो वो आंखें फाड़े हैरानी से अन्वय को देखने लगी और अगले ही पल इसे देखकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा मजाक करते हो तुम। ये मजाक नहीं है, अन्वय ने गंभीरता से कहा। उसकी बात सुनकर आन्या फिर हैरानी से उसको देखने लगी और उसके बाद मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तुम मजाक कहाँ करते हो, तुम तो मुझे बेवकूफ बनाते हो। तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ जो तुम कहोगे कि तुम इंसान नहीं वैम्पायर हो और मैं तुम्हारी इस बकवास बात पर विश्वास कर लूंगी? सुबह सुबह तुम्हें पागल बनाने के लिए मैं ही मिली हूँ। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, नहीं आने वाली तुम्हारी बातों में, समझे? वो तो देख ही रहा हूँ, आंखों में आंखें डालकर अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, अपना रूप दिखा रहा हूँ, पर तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम्हें पागल बनाने की जरूरत ही कहाँ है, तुम तो पहले से पागल हो जो सच देखकर भी उसे अनदेखा कर रही हो। अन्वय ने अब आन्या को कुछ नहीं कहा, वो समझ गया था कि उसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। वहीं आन्या ने उसको बड़बड़ाते देखा तो उसको घूरते हुए बोली, मिस्टर वैम्पायर, अगर खुद में बड़बड़ाना हो गया हो तो जाकर खाना बनाओ, कुछ देर में हमें निकलना है, मैं नहाने जा रही हूँ।
इतना कहकर उसने अलमारी से कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। अन्वय भी सिर झटक कर किचन में चला गया।